छठे मंत्र में साधना की स्थिति का वर्णन किया, जो कुछ दिखाई देता है नैवेद्य के रूप में अर्पित करो और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जब हनुमान जी पुष्प वहां पर अशोक वाटिका में गए, मां के पास वे सामने आए, जानकी जी को प्रभु श्री राम का संदेशा सुना दिया, तो उसके बाद आप पढ़ते हैं, वे कहते हैं मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां पर फल है। और मां ने क्या कहा, श्री राम को तुम हृदय में धारण करो और फिर यथेच्छ फल तुम खा लो। प्रवृत्ति नगरी के फल हैं, यदि नैवेद्य के रूप में हमने अर्पित नहीं किया तो वह भोग हमारे भीतर में विपरीत प्रकार की विक्रिया उत्पन्न कर सकता है, परंतु प्रभु को समर्पित कर दिया उससे फिर किसी प्रकार की विपरीत विक्रिया संभव नहीं, कोई विकार संभव नहीं। तो ठीक यहां पर यही बात कहते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है सर्वाणि भूतानि नैवेद्य के रूप में अर्पित करो और प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जब हम भोगों को प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उन वस्तुओं के ग्रहण के समय भी ईश्वर की स्मृति बनी रहती है। जैसे हम प्रसाद लें तो प्रसाद में ईश्वर की अवस्थिति का भान होता है, ठीक इसी प्रकार जब सारी चीजें अर्पित कर दी गईं और उसके बाद जब हम उन वस्तुओं का ग्रहण करते हैं तो ईश्वर की अवस्थिति का भान बना रहता है। इसी प्रकार साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते साधक सिद्ध बन जाता है, विज्ञानी बन जाता है। विज्ञानी बनने पर स्थिति कैसी होती है, फिर कहा गया कि वहां पर उसके लिए सारे के सारे भूत, ये जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ दिखाई देते हैं ये सभी के सभी उसके लिए आत्म तत्व ही बन जाते हैं। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मै वा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्व का दर्शन कर रहा है, शोक और मोह उसे कहां रहेगा, यह स्थिति। आठवें मंत्र में कह सकते हैं कि उसी आत्म तत्व विद की स्थिति का वर्णन किया गया है, सह कह करके सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी मणिभूहु स्वयंभूहु याथा तथ्यतो व्यदधार शाश्वती भय समाप्य। तो यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के विशेषण लगाए गए हैं, माने जिसने आत्मतत्व को जान लिया आत्मज्ञानी बन गया वह मानो इस प्रकार के गुण वाला हो जाता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। यह जो श्रुति वाक्य है उसी श्रुति वाक्य को के अर्थ को ध्वनित करने वाला यह मंत्र है। सपर्यगात वह जो आत्मविज्ञानी बन गया, विजानतः कल हमने ज्ञानी और विज्ञानी का अर्थ भेद स्पष्ट किया था। शंकराचार्य कहते हैं स्वानुभव संयुक्त जो ज्ञान है वह विज्ञान है, हम गुरु के मुख से सुनते हैं वह ज्ञान है, शास्त्रों में पढ़ करके प्राप्त करते हैं ठीक है वह ज्ञान, पर जब अपनी अनुभूति से उसे संयुक्त कर देते हैं तो वही विज्ञान बन जाता है, विशेष ज्ञान। तो यहां पर यह कहा गया कि जो विज्ञानी हो गया, आठवें मंत्र में उस विज्ञानी के स्वरूप का वर्णन है, चौथे और पांचवें मंत्र में आत्म तत्व के स्वरूप का वर्णन, आत्मा के स्वरूप का वर्णन, और इस आठवें मंत्र में आत्मा को जानने वाले के स्वरूप का वर्णन। तो कैसा हो जाता है? सपर्यगात, वह भी उसी प्रकार पर्यगात, परि माने सबोर, गात गया हुआ माने सर्वव्यापी हो गया। तो जो आत्मविज्ञानी है वह भी मानो सर्वव्यापी बन जाता है। श्री राम कृष्ण देव के जीवन की घटनाओं को देखने से यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। ये जो विशेषण यहां पर लगाए गए हैं, श्री राम कृष्ण देव के जीवन के आलोक में इन विशेषणों को समझने में सुविधा होती है। हम उनके जीवन में पढ़ते हैं, एक बार वे अपने कमरे से बाहर की ओर निकले गंगा की तरफ, जो अर्ध गोलाकार बरामदा है, वहां एकटक गंगा की ओर देख रहे थे। दो माझियों में लड़ाई हुई, एक ने दूसरे की पीठ पर जोरों से तमाचा मारा और श्री रामकृष्ण कराह उठे। उन्हें ऐसा लगा कि तमाचा उनकी पीठ पर पड़ा है, भाव में थे। उनका कराहना सुनकर के उनका भांजा हृदय राम, जो उनकी सेवा किया करता था, दौड़ा हुआ आया। क्या हुआ मामा तुम्हें? तुम इस प्रकार से कराह क्यों उठे? श्री राम कृष्ण तो भावावस्था में हैं, वे उत्तर कुछ दे नहीं पाए। अचानक हृदय राम की दृष्टि मामा की पीठ पर पड़ी और वहां पर उंगलियों के निशान, जैसे श्री राम कृष्ण को ही किसी ने तमाचा जड़ दिया हो। आग बबूला हो गया हृदय राम। मामा तुम उस दुष्ट का नाम तो बता दो जिसने यह अपराध किया है, आज उसका सिर धड़ से अलग होकर के ही रहेगा। मामा फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब भाव की अवस्था से उनका मन नीचे आया तो उन्होंने कहा कि नहीं रे रिदु, किसी ने मुझे मारा नहीं रे, आज मेरा मन फिर से वैसा ही व्यापक हो गया। दो माझियों की लड़ाई हो रही थी, एक ने दूसरे को पीटा, मुझे ऐसा लगा कि वह मार मुझे लगी। अब यह तो बहुत विलक्षण बात है। यदि स्वामी विवेकानंद जैसे तार्किक लोग न होते, श्री राम कृष्ण यदि सत्यवादी न होते, उनके जीवन में सत्य के प्रति जो आकर्षण, सत्य के प्रति जो निष्ठा, यदि उसका प्रमाण न मिलता तो हम इस घटना को भी कहते कि शायद कपोल कल्पित है कि कोई मनुष्य यहां तक व्यापक बन सकता है, उसका मन इतना सर्वव्यापी हो सकता है, यह श्री राम कृष्ण के जीवन से प्रमाणित होता है। एक दिन की घटना, सुंदर सुंदर लॉन पर कोई व्यक्ति बूट पहने हुए टहल रहा था, श्री राम कृष्ण का मन वैसे ही व्यापक हो गया, उनकी छाती लाल हो गई, उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हीं की छाती को रौंदते हुए चल रहा है। तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंत ऐसा कहा गया, स्तंभ माने घास, और आब्रह्म ब्रह्मत ब्रह्मा तक, तो घास से लेकर के तृण से लेकर के ब्रह्मा तक जिसको ब्रह्मबोध होता, तो यहां पर वही कहा गया सपर्यगात। शुक्रम, वह चैतन्य स्वरूप होता है शुक्र, और कैसा होता है? अकायम अव्रणम अस्नाविनम, अकायम वह अशरीरी होता है। अशरीरी का मतलब उसका यह जो लिंग शरीर है उससे वह परे, अकायम से लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसका निषेध किया गया। अव्रणम अस्नाविनम, व्रण किसमें होता है? शरीर में, भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में। अस्नाविनम, ये शिराएं किसमें होती हैं? स्थूल शरीर में। तो अव्रणम अस्नाविनम कहकर के स्थूल शरीर का निषेध किया, वह स्थूल शरीर से ऊपर है। शुद्धम, शुद्धम कहकर के निर्मल, यह जो कारण शरीर है उसका निषेध किया गया शुद्धम कहकर के। कारण शरीर मल शरीर कहलाता है। तीन शरीर हैं, यह स्थूल शरीर, फिर उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो तीनों शरीरों का निषेध किया गया, मानो वह तीनों शरीरों से परे, उसकी ऐसी स्थिति होती है माने उसने तीनों शरीरों का छेदन कर लिया या पंच कोशों का भेदन कर लिया। वेदांत की भाषा है, पंचकोश भेदन हम सुनते हैं वेदांत में। उसको त्रिशरीर छेदन भी कहा जाता है। पांच कोश आइडेंटिकली इक्वल टू तीन शरीर, अन्नमय कोश आइडेंटिकली इक्वल टू स्थूल शरीर, और ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंतर्गत तीन कोश आते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और जो पांचवा कोश है आनंदमय कोश इज आइडेंटिकली इक्वल टू कारण शरीर। तो चाहे आप पंच कोश भेदन कहिए, चाहे त्रिशरीर छेदन कहिए, या वेदांत की भाषा, तो यह जो आत्मविद हो गया है, आत्मविज्ञानी हो गया है, इन तीनों शरीरों को पार करके स्थित रहता है, माने शरीर ज्ञान से ऊपर, यह यहां बताया गया। अपापविद्धम, पापविद्ध कौन होता है? जिसमें द्वैत की भावना होती है, तो जहां पर भी द्वैत है वहां पर पाप है। शंकराचार्य तो बड़े कठोर और कट्टर अद्वैत वेदांती हैं, वे तो कहते हैं द्वैत बुद्धि ही पाप बुद्धि है, वे तो यहां तक चले जाते हैं। तो यह जो विज्ञानी हो गया है वह इस पाप से भी परे चले जाता है, अपाप विद्धम, उसको पाप छू नहीं पाता है, क्योंकि उसने द्वैत भाव की भूमिका को त्याग दिया है, वह द्वैत भाव से परे चला गया है। कविर मनीषी, वह कवि हो जाता है, कवि कहते हैं क्रांत दृष्टा को, कवि माने जिसने अतीत को देख लिया है, जो अतीत को देख सकता है वर्तमान को तो देख ही रहा है, और इसलिए वह भविष्य को भी देखने में समर्थ होता है। यदि मैं अपने अतीत को देखने में समर्थ हो जाऊं, वर्तमान मेरे सामने है ही, तो मैं अपने भविष्य को भी देखने में समर्थ हो सकता हूं, इसलिए क्रांति दृष्टा को कहते हैं तीनों कालों का दृष्टा, मानो वह त्रिकालज्ञ हो जाता है, यह कवि शब्द का अर्थ है। शास्त्रीय दृष्टि से वह कवि हो गया, आत्मविज्ञानी, मानो त्रिकालदर्शी हो गया, यह कहा। मनीषी, मनीषी का मतलब जो मन पर शासन करने में समर्थ है, मनसः ईष्टे मनीषी, मन पर शासन कर सकता है वह मनीषी है, वह अपने मन का राजा होता है। परिभूहु, वह सब ओर से व्याप्त, स्वयंभूहु स्वतंत्र, वह व्यापक है, सबके भीतर में स्थित परंतु स्वतंत्र है। यह जो ज्ञानी है विज्ञानी है वह सबके भीतर में व्याप्त अपना अनुभव करता है, पर किसी के दोष से अपने को दूषित अनुभव नहीं करता है, यह कहा गया है स्वयंभू। ऐसा याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधार शाश्वती व्य समाभ्य, और कैसा है यह जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसने संवत्सरों को, वर्षों को अपना अपना काम नियत करके बांट दिया है हरदम के लिए, चिरकाल के लिए। ऐसा कहा गया कि यह जो ब्रह्म तत्व है उसी के कारण यह सब चलता है, जैसे हमने पहले दिन कहा था भयातस्य अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य, यह बात यहां पर रखी गई है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष है वह इतना शक्तिधर हो जाता है कि वह यह सब करने में भी समर्थ होता है, कि ठीक है जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म के ही समान हो जाता है, या ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, उसके भीतर में ये सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब एक प्रश्न उठा है, उस प्रश्न को नहीं लेंगे क्योंकि वही प्रश्न बड़ा व्यापक है कि जो ब्रह्मज्ञ बन गया है उसके भीतर में ब्रह्म की सारी शक्ति आ गई, इसका मतलब क्या वह इस संसार की सृष्टि करने में समर्थ होता है, उसका लय कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, ये कुछ ऐसे प्रश्न वेदांत के क्षेत्र में उठाए गए हैं, और इन प्रश्नों पर बड़ी मीमांसा की गई है, बड़ी चर्चा की गई है, कि जो कहा गया ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, कि जो ब्रह्मविद है वह ब्रह्म ही हो जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्म की जितनी शक्ति है वह उस ब्रह्मज्ञ पुरुष को प्राप्त हो जाती है। तो क्या ब्रह्मज्ञ पुरुष संसार की सृष्टि कर सकता है, संसार का लय कर सकता है, यह प्रश्न उठाया गया है। तो उस प्रश्न में हम नहीं जाना चाहते, वह एक अवांतर प्रश्न होगा, यहां पर इससे संबंधित नहीं होगा, समय सापेक्ष होगा, इसलिए उसकी चर्चा में नहीं जाते। पर इतना कहा गया है वहां पर एक संकेत के रूप में, यदि ब्रह्मज्ञ के भीतर में इस प्रकार की इच्छा उठे तो वह करने में समर्थ है, पर वैसी इच्छा उसमें इसलिए नहीं उठती कि उसने अपनी इच्छा नाम की कोई चीज नहीं रखी है, उसने उस ब्रह्म की इच्छा में, उस ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया है, इसलिए उस ब्रह्मज्ञ की स्वतंत्र इच्छा का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इस प्रकार का उत्तर दिया गया है। तो यहां से चलें, यह आठवां मंत्र है और फिर इसके बाद जो छह मंत्र हैं, तीन तीन मंत्रों का त्रित्व है, त्रिक है, ऐसे दो त्रिक यहां पर आए, 9, 10, 11 इसमें अविद्या और विद्या की चर्चा, 12, 13, 14 इसमें असंभूति और संभूति की चर्चा। अब ऐसा लगता है कि यह क्यों लाया गया, यह बात यहां पर कैसे लाकर के रखी गई, तो इसी को समझने की हम थोड़ी सी चेष्टा करें। तो इससे ऐसा लगता है कि इस उपनिषद का जो मर्म है उस मर्म को हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा, पहले मंत्र में सिद्धांत का प्रतिपादन, दूसरे मंत्र में उसका व्यवहार, तीसरे मंत्र में बताया कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम आत्मतत्व का हनन करने वाले बनोगे। कौन सा है आत्मतत्व जिसका वह हनन करेगा, चौथे और पांचवें मंत्रों में बताया। फिर छठे में कहा कि ठीक है, संसार में जैसे रहना है, अब जो उस आत्म तत्व को जानना चाहता है वह साधना किस प्रकार से करे, एक स्थिति छठे मंत्र में बताई, और जब सिद्धि की स्थिति आई सातवें मंत्र में उसका वर्णन किया, और जब सिद्ध हो गया, वह ब्रह्म ज्ञानी बन गया, विज्ञानी बन गया, तो वह कैसा हो जाता है इसका वर्णन आठवें मंत्र में किया। अब कहते हैं कि इस स्थिति को पाने के लिए उपाय क्या है। ठीक है, वह तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, कोरे सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो हम को ऐसा लगेगा कि व्यवहार में इस सिद्धांत का प्रयोग कहां तक हो सकता है, कहां तक किया जा सकता है। इसके लिए कहा कि नहीं, इसका प्रयोग हो सकता है, और देखो किस प्रकार से इस ऊंचे सिद्धांत का प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। इसीलिए यहां पर दो त्रिकों में अपनी बात रखी गई। तो पहले त्रिक में अविद्या और विद्या की बात कहते हैं, कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयः इव ते तमो येवु विद्यायाम रता। समझ में पहले नहीं आता, अचानक यहां पर कैसे आ गए, तो कहा कि ठीक है, आत्म तत्व की बात तुमने सुनी, आत्मविज्ञानी कैसा होता है उसे भी तुमने देखा, यह बनने के लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें साधना में से जाना पड़ेगा। साधना क्या है, अविद्या और विद्या की साधना, इन दोनों की साधना करनी पड़ेगी, अविद्या की भी साधना और विद्या की भी साधना। किस प्रकार से करनी पड़ेगी वह यहां पर वर्णित होता है। जैसे आप मुंडक उपनिषद में पढ़ते हैं, शौनक हैं, महागृहस्थ, वे जाते हैं अंगिरा के पास प्रश्न लेकर के, और प्रश्न करते हैं कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातं भवति इति, भगवान आप यह बता दीजिए कि किसको जानने से सब कुछ का जानना हो जाता है। शौनक के मन में जिज्ञासा रही होगी, यह जीवन अल्प है और ज्ञान का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है, तो इस अल्प जीवन में एक क्षेत्र का पूरा पूरा ज्ञान ही समेटा नहीं जा सकता, तब फिर आखिर जानना हो तो क्या किया जाए, कोई ज्ञान का अर्क है क्या, जिस अर्क को मैं जान लूं तो जो कुछ जानने का है वह ज्ञात हो जाता है। ऐसी पृच्छा लेकर के, जिज्ञासा लेकर के शौनक जाते हैं और पूछते हैं, भगवान कुछ ऐसा है क्या जिसको जान लेने से सब कुछ का जानना हो जाए, यथा एकस्मिन् मृत्पिंडे विज्ञाते सर्वम मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, जैसे मिट्टी के एक लोंदे को जान लेने से जो कुछ भी मिट्टी का बना है वह सब जान लिया जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा कुछ है क्या जिसको मैं जान लूं तो सब कुछ का जानना हो जाए। इसके उत्तर में अंगिरा ऋषि कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति पराचैव अपराच। दो विद्याओं को जानना पड़ता है शौनक, एक है अपरा और दूसरी है परा। तो ठीक यहां पर इन्हीं अर्थों में अविद्या और विद्या की बात कही जा रही है। तो यहां पर यह कहते हैं, जैसे शौनक को बताया अंगिरा ने कि ठीक है, दो विद्याओं को जानो, अपरा को जानो, परा को जानो, तो यहां पर कहते हैं अविद्या को जानो और विद्या को जानो, पर कैसे जानो यह बताया गया। अविद्या क्या है और विद्या क्या है, तो यहां पर भगवान भाष्यकार शंकराचार्य अविद्या का अर्थ लेते हैं कर्म, जैसे विद्या का जो विपरीत हो, विद्या का जो विरोधी हो। तो जैसे कर्मकांड उस युग में बहुत प्रचलित था, तो लोग यज्ञादि कर्म करते थे और उस यज्ञादि कर्म का लक्ष्य केवल स्वर्ग पाना था, यह हम पहली चर्चा में कह चुके हैं। तो इसको कहा गया है अविद्या, केवल कर्म करना। कर्म हम किए जा रहे हैं, हम कर्म आहुतियां प्रदान करते हैं, तो इस कर्म को इस अविद्या के नाम से यहां पर पुकारा गया। यह मानो अविद्या, अविद्या मानो कर्म, और यह जो विद्या है, विद्या का मतलब उस समय लोग विद्या में रत रहा करते थे, विद्या में रत रहने से हमें देवलोक मिलेगा, केवल भांति भांति की उपासना पद्धति, कोरा सिद्धांत, इसको कहा गया है विद्या। अविद्या क्या है? कर्म, केवल कर्म में लगे रहना, कर्म की पृष्ठभूमि से मानो हम अज्ञानी बने रहें, वह है अविद्या का क्षेत्र। और विद्या का क्षेत्र क्या है कि ठीक है हम विद्या में लगे हैं, परंतु विद्या में किस प्रयोजन से लगे हैं, इस प्रयोजन को हम भूल जाते हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, अंधे अंधकार में, माने गहरे अंधकार, अंधम तमः माने अंधा अंधकार, माने गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या में जो हैं रत हैं उसकी उपासना करते हैं, वे गहरे अंधकार में जाते हैं। ततो भूयः इवते तमो, ये वो विद्यायाम रता, इनकी अपेक्षा भी मानो अधिक गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो विद्या की उपासना में रत हैं या विद्या में रत हैं। अब बहुत विचित्र बात लगती है कि यह बात तो समझ में आई कि जो अविद्या में हैं, जो कर्म की उपासना कर रहे हैं, केवल कर्म में लगे हैं, ठीक है वे गहरे अंधकार में गए, जहां पर आत्म तत्व नहीं तत्व है, जहां आत्मा का तत्व नहीं है, ऐसे लोक में ये चले गए, यह बात समझ में आई। पर जो लोग विद्या में रत हैं, वे लोग इनकी अपेक्षा कहीं अधिक गहरे अंधकार में मानो जाते हैं। अब यह तो उल्टी बात लगती है ना कि कैसे गहरे अंधकार में जाते हैं, तो यहां पर एक दो उदाहरण देने से बात समझ में आ जाएगी। अविद्या के पास चलने के पैर है, उसमें कर्तृत्व है, उसके पास क्रिया है। जैसे कह लीजिए कि अंधे और लंगड़े की बात आपने पढ़ी है, तो यह जो अविद्या है उसके पास चलने के पैर तो हैं पर देखने की आंखें नहीं है, और जो विद्या है, विद्या के पास देखने की आंखें हैं पर चलने के पैर नहीं है। ये दो स्थितियों की कल्पना आप कीजिए। अब जो अविद्या में लगे हैं उपासना करते हैं, वे गहरे अंधकार में जाते हैं, अंधा है, कर्म तो कर रहा है, टटोल रहा है, ठीक है वह गहरे अंधकार में जाता है, पर जो विद्या में लगा हुआ है वह मानो और भी गहरे अंधकार में जाता है। इसका क्या मतलब है कि जो विद्या में लगा है उसको मालूम तो है लक्ष्य, उसे पता तो है कि जाना यहां है पर जा नहीं सकता है, जाने की संभावना उसमें है नहीं, उसके पास पैर है नहीं, उसने पैर की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है, तो केवल सैद्धांतिक रूप से जान ले कि यह लक्ष्य है और उधर जाने की चेष्टा ही न करे, क्योंकि उसके पास जाने की सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए वह कहे कि बस मैं केवल लक्ष्य का विचार करता रहूंगा, तो यह तो मानो और भी गहरे अंधकार में जाना हुआ। वह जो अविद्या में है, जिसके पास आंखें नहीं है, वह चल तो रहा है और चलते चलते संभव है एक दिन वह लक्ष्य के पास पहुंच भी जाए, परंतु यह जो दूसरा व्यक्ति है जो चलना नहीं जानता, चलता नहीं है, केवल विचार ही करता रहता है, केवल देखना ही करता रहता है, यह व्यक्ति तो मानो और भी गहरे अंधकार में जाएगा। लक्ष्य को जान करके भी जो लक्ष्य के प्रति निश्चित नहीं है, तो यह व्यक्ति तो और भी मानो गहरे अंधकार में जाएगा। श्री राम कृष्ण का एक उदाहरण बहुत ही सटीक है। अब वे कहते थे कि एक गांव से एक ग्वालिन दूसरे गांव में दूध देने के लिए आती थी। दोनों गांवों के बीच में एक नदी थी, वह आती थी। पंडित जी के घर में एक भागवती पंडित थे। पंडित जी के घर में दूध की चंडी बंधी थी। बरसात के दिन आए तो स्वाभाविक है, ग्वालिन को दूध लाने में देर हो जाए। जब उसको नौका मिलती तो जल्दी आ जाती, और जब नौका नहीं मिलती तो विलंब हो जाता। एक दिन पंडित जी ने कहा कि तुम देर से दूध देती हो और सुबह सुबह दूध की आवश्यकता है। कहा, आप तो जानते हैं महाराज, वहां पर नौका के लिए मुझे रुकना पड़ता है, या कुछ नहीं जानता। देखो, अगर समय पर तुम दूध न दे सको तब तो तुम्हारी चंडी हमें काट देनी पड़ेगी, हम दूसरी जगह से दूध ले लेंगे। कुछ दिन बीते, एक दिन ग्वालिन दूध लेकर के आई थी। पंडित जी कोई कथा कह रहे थे, भागवत की कथा, श्री रामकृष्ण यह बता रहे हैं, भागवत की कथा चल रही थी। पंडित जी ने कथा प्रसंग में कहा कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है कि भगवान का नाम लेकर के मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है। यह प्रसंग चला था, ग्वालिन सुनती रही, उसे प्रसंग बहुत अच्छा लगा। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो ग्वालिन ने पंडित जी को प्रणाम करके पूछा, अच्छा पंडित जी, आप आज जो कथा कह रहे थे उसमें जो एक प्रसंग की बात कह रहे थे, वह प्रसंग की बात क्या सत्य है? किस प्रसंग की बात? आप कह रहे थे ना, भगवान के नाम में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है कि मनुष्य भगवान का नाम लेकर के भवसागर पार हो जाता है। हाँ हाँ, शास्त्र की बात है, मैं क्या अपनी बात कह रहा था? बिल्कुल सही है, भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर को पार हो जाता है। ग्वालिन ने कहा, तो महाराज एक प्रश्न पूछूं? तू क्या प्रश्न पूछेगी? प्रश्न तो दूसरे लोग पूछते हैं जो शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, तुझे भला यह प्रश्न कहां से आ गया? नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा भवसागर पार कर लेता है, यह भवसागर क्या चीज है? पंडित जी जोरों से हंसे, मूर्ख कहीं कि अब तुझे क्या समझाऊं, यह भवसागर क्या है? अच्छा देख, ये गांव की नदी है ना, कितना कठिन है उसको पार करना। अरे बहुत कठिन है महाराज, उस दिन तो पानी चढ़ गया था नदी में, और वो रामू केवट है ना, इतना बढ़िया तैराक, परंतु उस दिन तो वह भी बिल्कुल नदी में बह गया था, किसी प्रकार उसके प्राण बचे, पार करना बड़ा कठिन है। हाँ, पंडित जी ने कहा, देख एक नदी को पार करना कितना कठिन, ऐसी बहुत सी नदियां मिल जाए तो एक सागर बनता है। सागर, सागर को पार करना कितना कठिन? कहा ग्वालिन ने अपने ढंग से हिसाब लगाया, एक नदी को पार करना इतना कठिन, और इतनी बहुत सी हजारों नदियां मिलकर के सागर बने तो सागर को पार करना असंभव है महाराज, बहुत कठिन है ना। तो भव सागर इससे भी बहुत कठिन है पार करना उसे। अब कुछ वे दार्शनिक चर्चा भव सागर की करने लगे, ग्वालिन के मत्थे कुछ पड़ा नहीं। कहा महाराज बस बस हो गया, बस मैं यही जानना चाहती थी कि जिस भवसागर की बात आप कह रहे थे वह हमारे गांव की नदी से बड़ा है या छोटा है? पंडित जी खूब हंसे, आखिर गंवार ही ठहरी, अरे कहां तेरे गांव की नदी और कहां भवसागर। ठीक है महाराज, ठीक है बस। अच्छा ये बता दीजिए, जब भगवान का नाम लेकर के मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है तो गांव की नदी को पार नहीं कर सकता भगवान का नाम लेकर के? पंडित जी ने सोचा, मूर्ख है, गंवार है, अरे क्यों नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है, भगवान का नाम लेकर के नदी को क्यों नहीं पार किया जा सकता। बस महाराज बस, प्रणाम करके चली गई। दूसरे दिन से पंडित जी को ठीक समय में दूध मिल रहा है, बिल्कुल। एक दिन पंडित जी ने कहा कि क्यों री, आजकल तूने अपने लिए नाव खरीद ली, पैसा बहुत हो गया है दिखता है। क्यों महाराज, समय पर आकर के दूध दे जाती है, आजकल भी तो बरसात है, नदी चढ़ी हुई है। अरे महाराज, अरे नाव तो आपने मुझे दे दी उस दिन। क्या मतलब? आपने ही कहा ना कि भगवान का नाम लेने से नदी को पार कर लिया जा सकता है। जब भवसागर को आदमी पार कर लेता है तो नदी को पार करना फिर क्या क्या मतलब? पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। तो क्या कह रही है? हाँ ठीक ही कह रही हूं, भगवान का नाम लेती हूं और बस पानी पर चल करके नदी को पार कर लेती हूँ, असंभव। पंडित जी ने कहा, ऐसा तू करती? कहा महाराज, आपने ही तो कहा, आज मैं लौटूंगी तो आप मेरे साथ चलिए, देख लीजिए कि कहीं मैं कुछ गलती कर रही हूं या नाम लेने में कहीं पर किसी प्रकार भूल हो रही है? पंडित जी का हाँ जरूर चलूंगा। पंडित जी आए साथ में, नदी चढ़ी हुई थी और ग्वाली न तो कपड़े उठाती है न समेटती है, बस भगवान का नाम लेकर के नदी पर यूं चलती है जैसे हम जमीन पर चलते हैं। अब पंडित जी तो इतस्ततः करने लगे। ग्वाली ने कहा, महाराज आओ ना, देखो तो मैं ठीक तो नाम ले रही हूं ना। अब पंडित जी को लगा क्या करें, यह ग्वालिन यह गंवार भगवान का नाम लेकर के इस प्रकार जा रही है और मैं तो इतना पंडित हूं विद्वान हूं, तो क्या मैं भगवान का नाम लेकर के पानी पर नहीं चल सकता? भगवान का नाम लिया, नदी में उतरे, धम से कमर इतने पानी में गिर पड़े।